शहर की ओर, जब चले शहर की ओर।
नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि जोशी आपकी दोस्त,
और मैं नरेंद्र तिवारी हर बार की तरह इस बार भी हाजिर हैं कुछ नई जानकारियों के साथ
आपके अपने कार्यक्रम को लेकर, जिसका नाम है
जब चलें शहर की ओर। तो दोस्तों, एक एक करके आज जब चलें शहर की ओर कार्यक्रम अपने 20वें एपिसोड पर आ पहुंचा है, और इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे फोर्ड फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस का, जिनके वित्तीय सहयोग से आइडियोसिंक मीडिया कंबाइन आपके लिए ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है।
और इस दौरान इस कार्यक्रम के द्वारा हम आपके लिए वो सभी जानकारियां उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं जो आपके प्रवास की राह को आसान बना सकती है।
और इस बार भी हम आपको देंगे कुछ नई जानकारियां।
प्रोग्राम में दी गई जानकारी से जुड़ा अगर कोई भी प्रश्न आपके पास है तो हमें 9197176723 पर SMS कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जरूरत की जानकारी को जल्द से जल्द कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर के जरिए आप तक पहुंचाया जाए।
तो और वक्त जाया ना करते हुए शुरू करते हैं धारावाहिक शहर की ओर की 20वीं कड़ी से।
दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि चंदर को ढाबे पर नौकरी मिल जाती है। चंदर फोन पर कल्पना को नौकरी मिलने की बात बताता है। कल्पना चंदर को उसके मालिक से पैसों के बारे में बात करने के लिए कहती है। इधर गांव में धीरे धीरे मीरा की डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है। मधु मीरा को प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर जाकर चेकअप करवाने की सलाह देती है। अब आगे की कहानी।
आपका नाम?
हरिंदर।
हरिंदर, ठीक है, बैठ जाओ।
जी।
जोर से सांस लो। एक बार फिर सांस लो। यहां हो रहा है दर्द?
नहीं।
यहां महसूस हो रहा है दर्द?
हाँ डॉक्टर साहब।
अच्छा, इधर भी?
हाँ हल्का हल्का।
ठीक है, बहुत कमजोरी आ गई है तुम्हें।
जी।
ये पैरों में सूजन और पेट में दर्द कलेजे में पानी भरने की वजह से है।
अच्छा।
कितनी पीते हो?
जी मैं कहां डॉक्टर साहब, बस कभी कभी दोस्तों के साथ।
ये कभी कभी वाली सूजन तो नहीं लगती? देखो, अगर जीना चाहते हो तो ये पीना छोड़ना पड़ेगा।
जी डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगे ना?
समय पर लेकर आई हो इसलिए ठीक होने की अब भी गुंजाइश है, लेकिन इसके लिए बड़े अस्पताल में पूरा चेकअप करवाना पड़ेगा।
ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब?
देखो, पीने का शौक रखते हो तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। अभी मैं सूजन कम करने के लिए कुछ सामान्य दवाइयां लिख रहा हूँ, पर एक बार पूरा चेकअप आप करवा ही लो।
जी डॉक्टर साहब।
और हाँ, आप भी पूरा आराम करो और अच्छे से खाना पीना खाओ, ठीक है?
जी।
और एक बात और, अपने लिए शहर के सरकारी अस्पताल में बेड बुक करवा लो। अगले महीने बीच में या आखिर में कभी भी डिलीवरी हो सकती है।
पर डॉक्टर साहब, ये सब तो घर पर भी।
अरे लगता है जान प्यारी नहीं है तुम्हें अपनी और न ही अपने बच्चे की। अरे सरकारी अस्पताल में ये सारी सुविधाएं मुफ्त हैं, तुम्हारा कोई खर्चा नहीं होगा, न डिलीवरी का और न ही दवाइयों का।
जी डॉक्टर साहब।
और क्यों हरेंद्र जी, अपना पूरा ख्याल रखेंगे ना आप?
जी।
और अपनी पत्नी का भी?
जी डॉक्टर साहब।
ठीक है, गुड, वेरी गुड।
क्या बात है भाई चंदर, आज तो काफी खुश हो है। बड़ा गाना वाना गाया जा रहा है।
अरे नहीं नहीं बलराम भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस ऐसे ही, दरअसल ये हमारे यहाँ का काफी मशहूर गाना है।
अच्छा अच्छा, ठीक है। अब ये ले, ये टमाटर काट दिया है।
ठीक है।
अच्छा सुन चंदर
जी,
आज रात को कुछ कर रहा है क्या?
जी।
अरे मेरा मतलब है कि आज रात को कुछ काम तो नहीं है ना तेरे को?
अरे कहाँ बलराम भैया, भला मेरे पास क्या काम हो सकता है?
अरे आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो शाम को सबको मेरी तरफ से पार्टी है।
वाह बलराम भैया, ये तो बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन खाना तुमको बनाना पड़ेगा।
लेकिन मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ ना।
अरे देखने से कोई खाना बनाना नहीं सीखता है चंदर, उसके लिए खुद खाना पकाना पड़ता है।
इसका मतलब मैं फंस गया।
पूरे फंस गए हो भैया, अब तो खाना बनाना ही पड़ेगा।
चलिए ठीक है, लेकिन खाना फिर गढ़वाली स्टाइल का बनेगा।
अरे फिर तो और भी मजा आएगा चंदर भैया।
हेलो।
हेलो बौजी।
हाँ उमेश।
हाँ मैं, कैसी हो बौजी?
मैं ठीक हूँ। अरे तुम तो बस गायब ही हो गए, कोई अता पता ही नहीं है।
अरे बौजी बस क्या बताऊँ, वैसे मुझे यहाँ एक बढ़िया काम मिल गया है।
अच्छा कहाँ?
यहीं गाजियाबाद में एक टीवी सीरियल बनाने वाली कंपनी में नौकरी मिल गई है।
हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है।
और हाँ पैसे भी ठीक ठाक हैं।
चलो अच्छा है, लेकिन उमेश चंदर के साथ तुमने अच्छा नहीं किया, उसको यूं यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था।
अब काम निकला है तो मैं क्या करता बौजी, खुद को देखूं या उसे संभालते फिरूं? वैसे उसकी कोई खबर?
द्वारका के पास किसी ढाबे पर नौकरी कर रहा है।
चलो अच्छा हुआ।
घर आ जाओ कभी दिवाली की छुट्टियों में, तुम तो सबको भूल ही गए।
अरे ऐसी बात नहीं है बौजी, यहाँ दरअसल काम बहुत ज्यादा है, ऊपर से नई नई नौकरी है, सोच रहा हूँ दिवाली पर कुछ दिनों के लिए गाँव जाऊँ।
अच्छा
ठीक है बौजी, अब मैं रखता हूँ, अभी काम पर भी जाना है।
ठीक है उमेश, फोन करते रहना।
जी बौजी।
पाँच किलो पनीर है, अच्छा ये हो गए दो बोरी आलू, अच्छा और ये है एक बोरी प्याज।
साहब।
चंदर बोल।
साहब मुझे पैसों के बारे में।
पैसे? कौन से पैसे?
जी साहब मेरी तनख्वाह।
ओ तुझे पैसों के बारे में बात करनी है?
जी जी हाँ।
अरे चंदर तू अभी अपने काम पर ध्यान दे, ये पैसे वैसों के बारे में मत सोच हैं? अरे उसके लिए मैं हूँ ना, तू घबरा मत, तुझे घाटे में नहीं रखूंगा। अभी थोड़ा काम कर, ये जरा पाँच किलो पनीर गज्जू को दिया और ये दो बोरी थोड़ा उठाकर किचन में रख, चल सोचूंगा फिर पैसे के बारे में, चल।
जी।
बड़ा आया पैसों के बारे में बात करने वाला है।
मधु मधु। अरे मधु तू यहाँ मसाला पीस रही है और उधर चंदर का फोन आने वाला है।
क्या उनका फोन आने वाला है?
हाँ बस अभी थोड़ी देर पहले ही सुषमा आई थी बताने कि चंदर ने फोन किया था और वो आधे घंटे में फिर फोन करेगा।
हाँ अच्छा मैं चलती हूँ, पर ये काम दीदी आप ये।
चिंता मत कर मैं काम संभाल लूंगी, तू जा।
ठीक है दीदी।
नरेन तुम्हें क्या लगता है, ढाबे का मालिक चंदर को पैसे देगा?
भाई अंजलि इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। हाँ लेकिन इतना जरूर है कि पेमेंट की बात जितनी साफ और खुले तौर पर हो जाए ना उतना ही अच्छा रहता है।
हाँ ये तो है। चलो चंदर के साथ क्या होगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन अभी हम अपने कुछ प्रवासी दोस्तों से जानते हैं कि क्या कभी उनके साथ कोई धोखेबाजी हुई है, और अगर हुई है तो उन्होंने ऐसी परिस्थिति का सामना कैसे किया है।
तो आइए ये सब कुछ सुनते हैं हमारे अगले सेगमेंट में।
जब हम दिल्ली आए तो हम एक हलवाई की दुकान पर काम कर रहे थे, एक दिन हमसे दूध का भगोना उलट गया और मालिक ने वो बात को लेकर हमको काम से निकाल दिया। गरीब आदमी थे, कब तक घर में खाली बैठते। मालिक से पैसा मांगने गए तो उसने लताड़ के भगा दिया, कहा वो दूध फैलाया उसमें हिसाब बराबर हो गया, कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब हम गरीब आदमी दूसरी नौकरी ढूंढ लिए, अब कब कब बड़े बड़े आदमियों से लड़ाई करेंगे।
मैं ओखला फैशन में सिलाई में काम करती थी, एक महीना काम किया और उसके बाद सैलरी नहीं मिली, अगले बार भी दूसरा महीना आधा हो चुका था तब भी सैलरी नहीं मिली। सुपरवाइजर को हमने जब कहा तो उसने कहा कि तुम्हारी सैलरी ऊपर से नहीं मिली, तो हमने कहा दूसरे स्टाफ वालों की कैसे मिल गई और हमारी क्यों नहीं मिली। फिर हमारे स्टाफ वालों ने मैनेजर को जाके उसकी रिपोर्ट दी, फिर मैनेजर ने मालिक को जाके रिपोर्ट दी, फिर मालिक ने उससे पूछा कि क्यों भाई इनकी सैलरी मैंने आपके पास जब दे रखी है तो आपने इनको डेढ़ महीने से क्यों सैलरी नहीं दी। फिर उससे झगड़ा किया, लड़ाई की, झगड़े होने के बाद ही सैलरी हमें दी।
मैं खानपुर में मोटर मैकेनिक का काम करता था, एक बार काम करते समय मेरे से एक औजार टूट गया, तो मालिक ने उस औजार को देख करके बोलने लगा कि तू यहाँ से निकल जा, तेरे से काम वाम तो होगा नहीं और तेरे को कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने सोचा कि लड़ाई झगड़े में तो कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा कंप्लेंट कर दें। तो मैं गया थाने, गया थाने जा करके मैंने उनको अपनी समस्या के बारे में बताया, तो उन्होंने मेरी समस्या को देख करके मेरे साथ गए और मेरा पैसा दिलवा दिया।
कैसे कुछ लोग पेमेंट के नाम पर धोखेबाजी करते हैं ना, इसलिए मैं तो बार बार यही कहूंगा कि तनख्वाह की बात बिल्कुल साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में नौकरी लेते वक्त ही कर लें।
हाँ बिल्कुल सही कहा नरेंद्र। रुद्रप्रयाग के कुंवर सिंह के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जहाँ उनकी दुकान के मालिक ने उन्हें उनका सामान वापिस देने से इनकार कर दिया। और नरेंद्र सुनते हैं उनकी विश्वास भरी कहानी हमारे अगले सेगमेंट कुछ विश्वास में।
मेरा नाम कुंवर सिंह नेगी। मैं सन 2000 में घर से बाहर गया था। बाहर जाते जाते एक साथी ने मेरे से बात कर ली थी कि ऐसा करते हैं दोनों नौकरी की तलाश में निकलते हैं, चाहे कहीं भी जाना पड़े। तो चले गए यहाँ से, गाड़ी से होते हुए शिमला पहुँच गए। एक स्वीट शॉप में नौकरी करने लग गया। तो मेरा काम था जो भी डिमांड देगा उनके पास केवल दूध और जलेबी पहुँचाना था। एक दिन बाथरूम के बहाने अपने दोस्त के दुकान पर पहुँच गया। वहाँ 5-10 मिनट दोस्त के साथ बैठकर फिर ऊपर दुकान में चले गए। अपनी दुकान में गया तो वो मुझे डराते धमकाते और गाली गलौज करने लग गए। तो उन्होंने मेरे को कहा कि तू अब बर्तन धो ले बचा, उधर बैठ जा। बर्तन धोते धोते बिल्कुल ख़त्म हो रखे थे हाथ पांव। तो मैंने अपने हाथ पांव देखे तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा ये काम बेकार है, मन हट गया मेरा उस दुकान से। उस साथी के पास चले गया मैं शाम को। फिर बैग वो तो मेरा दुकान ही में था, उसी अपने ही दुकान में था। ऐसा हुआ कि बैग की बात आई तो बैग उसने दिया ही नहीं मेरे को। अपनी हालत को देख कर मुझे ऐसा लगा कि आंखों में आंसू हर प्रकार से रुलाने के लिए तैयार हो गई। एक दिन घूम रहे था मैं अकेला, तो वहाँ विचार बनाया कि क्यों ना इनकी बैग के प्रति रिपोर्ट थाने में की जाए। तो डरते डरते थाने के सामने पहुँच गया। साहब लोगों ने बताया कि तू सदर में चले जा नीचे। घूमते घूमते सब्जी मंडी से होते हुए मैं नीचे सदर में पहुंच गया। सदर में पहुंचते ही अंदर बैठे दो पुलिस वाले भाई ने कहा क्या बात है, कहां से आया, क्या आया। मैंने कहा यहां से, अपना एड्रेस देखे। उन्होंने ये बताया मेरे को, ठीक है तू चिंता न कर और अपनी रिपोर्ट लिख, उसके बाद सब काम हो जाएगा तेरा। और मैं वहां से एक पुलिस वाले के साथ मैं भी दुकान पर पहुंच गए जहां मैं काम करता था। दुकान पर पहुंचे तो वहां देखा होटल वाले की हालत ख़राब हो गई। तो पुलिस वाले ने पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं दिया इसका बैग। उन्होंने कहा कि साहब ये चोरी करके भागा यहां से। मैंने कहा साहब अगर मैं चोरी करके भागता तो मेरी हालत देखो आप, क्या है मेरे पास चोरी का माल। तो ठीक है, पुलिस वाले ने संभाल लिया। उन्होंने कहा कि भाई निकालो इसका बैग। तब जाके मैंने अपना बैग हासिल किया और 3-4 दिन का पेमेंट 100 रुपये दिला दी वहां से। और वहां से उसके बाद मैं अपना खुशी मन होके अपने फिर ढाबे पर चले गया।
नरेन,
हाँ
तुम्हारे पास कुछ टिप्स हैं जिन्हें अपनाकर हमारे प्रवासी श्रोता अच्छी सैलरी प्राप्त करने के लिए अपनी कंपनी से सही ढंग से बातचीत कर सकें?
अंजलि अंजलि, शायद तुम कुछ भूल रही हो।
क्या नरेन?
अरे भाई ऐसे टिप्स मैं नहीं भैजी देते हैं।
अरे हाँ, उनके पिटारे में तो ऐसे बहुत सारे टिप्स होंगे। तो दोस्तों आइए सुनते हैं इस बारे में भैजी हमें क्या टिप्स देते हैं।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल। बात करता हूँ लाख पते की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
नमस्कार भैजी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद नरेन।
अच्छा भैजी, हमारे आज सारे श्रोता आपकी सलाह जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं। आखिर सैलरी का मामला जो है।
ओ, सैलरी का यानी कि तनख्वाह।
जी भैजी, क्योंकि हमने उन्हें बताया है कि आज आप बताएंगे कि वो कैसे और किस प्रकार और किस किस आधार पर अपनी सैलरी की बात अपने मालिकों से कर सकते हैं।
तो ये बात है भाई, मुझे भी बड़ी खुशी होगी अगर मेरे पिटारे में से निकले टिप्स लोगों को सही तनख्वाह दिलाने में मदद करें।
तो चलिए भैजी फिर शुरू हो जाइए।
बिल्कुल। तो भाई इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अपना बायोडाटा साथ जरूर ले जाइए, जिसमें आपका सारा अनुभव लिखा हो। उस अनुभव के आधार पर सामने वाला खुद अंदाजा लगा सकता है कि इस इंसान को कम से कम कितनी तनख्वाह दी जानी चाहिए। क्यों अंजलि, क्या कहती हो?
जी भैजी बिल्कुल, लेकिन वो भी तो चाहेंगे कि उन्हें कम पैसों में अच्छा काम करने वाला मिले।
बिल्कुल चाहेंगे, इसीलिए इंटरव्यू से पहले आप भी थोड़ा गणित कीजिए और जोड़ लीजिए कि आपके अनुभव और जरूरतों के अनुसार हर महीने आपके हाथ में कितना पैसा होना चाहिए।
बिल्कुल सही कहा भैजी आपने।
फिर ये भी देखिए कि जिस क्षेत्र में आप नौकरी के लिए जा रहे हैं उसी क्षेत्र से जुड़े दूसरे लोगों को क्या तनख्वाह मिल रही है। अब ये सब जोड़कर जो भी संख्या बनेगी वही होगी आपकी तनख्वाह। कोशिश कीजिए कि सामने वाला जितना भी पैसा दे वो इसी संख्या के आसपास हो।
लेकिन भैजी अगर वो फिर भी ना माने तो?
तो भाई फिर आपको ये निश्चित करना होगा कि आपकी जरूरतों के अनुसार क्या सही है। जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाएं।
क्योंकि अगर आप मान गए तो फिर उसके बाद आप उनका निर्णय नहीं बदलवा पाएंगे, क्यों नरेन?
बिल्कुल अंजलि। तो दोस्तों आपने सुना, अब आप बड़ी ही आसानी से अपना और अपने काम का मूल्यांकन करके अपनी सैलरी की मांग रख सकते हैं। उम्मीद है भैजी के टिप्स आपके बेहद काम आएंगे। भैजी आपने हमारे श्रोताओं को काम की टिप्स दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
दोस्तों अगर शहर में काम करने के दौरान कोई आपके अधिकारों का हनन करता है तो आप किससे मदद लें?
इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे हमारे अगले सेगमेंट काम की बात में। दोस्तों कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो आपके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती हैं और उन्हीं में से एक है ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, जो मानव अधिकारों के कानूनों पर कार्यरत है।
इसकी शाखाएं दिल्ली, मुंबई और उत्तराखंड में हैं।
यहाँ का दिल्ली का पता है ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, 576 मस्जिद रोड, जंगपुरा, दिल्ली 110014, और फोन नंबर है 011-2437-4501 और 2437-6922।
और अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं ICHRL, पहली मंजिल मोतीवाला मेंशन, 56 दमर गली, मस्जिद वेस्ट, मुंबई 400009। यहाँ के फोन नंबर्स हैं 02223439754 और 23436692।
इन दोनों शहरों के अलावा अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं और वहाँ आपके साथ आपके अधिकारों को लेकर कोई समस्या है तो आप इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। पता है ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, ईश्वरिया भवन, वेस्ट पोखरखली, रानी धारा रोड, अल्मोड़ा, उत्तरांचल 263601 और फोन नंबर है 0596223384।
दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क से संपर्क कर मदद मांग सकते हैं।
दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाने वाले प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट बनाया है।
इस एक्ट में प्रवासियों के लिए ये प्रावधान है कि दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाने के बाद वो अपने परिवार को वहाँ बसाने का खर्च अपनी कंपनी से मांग सकते हैं।
लेकिन हाँ, ये कानून सिर्फ उन कंपनियों पर लागू है जो रजिस्टर्ड हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप रजिस्टर्ड कंपनियों में ही काम करें।
एक्ट के तहत ये जरूरी है कि कंपनी अपने यहाँ काम करने वाले सभी प्रवासी कर्मचारियों के लिए एक पासबुक जारी करे, जिसमें उनको दिया जाने वाला वेतन, अग्रिम राशि, स्थानांतरण भत्ता और यात्रा भत्ते का पूरा विवरण हो।
इसके अलावा ये भी कंपनी की ही जिम्मेदारी है कि वो आपको न्यूनतम मजदूरी या उससे अधिक मजदूरी दे, साथ में चिकित्सा सुविधाएं और कार्य से संबंधित सुरक्षित कपड़े भी उपलब्ध करवाए।
और हाँ, किसी दुर्घटना की स्थिति में ये कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वो कर्मचारी के परिवार और रिश्तेदारों को इसके बारे में तुरंत सूचित करे।
दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रही है और आपके अधिकारों का हनन कर रही है तो आप इसके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं। पता है लेबर कमिश्नर, सी ब्लॉक, 5 श्यामनाथ मार्ग, दिल्ली 110054 और यहाँ के फोन नंबर हैं 011-2395-1115 और 2396-2823।
तो दोस्तों, ये तो थी काम की बात। यदि आप इसके अलावा या फिर इस संबंध में कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9197178223।
हम आपकी जरूरत की जानकारी जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे।
और अब आ चुका है वो सेगमेंट जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी चिट्ठी की।
नरेन, आज हमें रानीहाट पौड़ी गढ़वाल से श्यामा देवी जी ने चिट्ठी लिखी है।
तो अंजलि, क्या लिखा है श्यामा देवी जी ने?
ये लिखती है नरेन कि ये 8 साल पहले तक अपने गांव में रहती थी। इनके पति दिल्ली में रहते थे, वहीं नौकरी करते थे, लेकिन इन्हें खर्चे के लिए कुछ नहीं भेज पाते थे। फिर इन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाला और एक दिन अपने बड़े बेटे को भी नौकरी करने के लिए शहर भेज दिया। आगे ये लिखती है कि हालात लेकिन दिन पर दिन बिगड़ते चले गए। यहाँ तक नौबत आ गई कि मेरे बच्चे 4 दिन और 4 रात भूखे रहे। सिर्फ 2 वक्त उन्हें भैंस का दूध दिया करती थी। भैंस भी कुछ दिनों बाद मर गई। फिर मैं अपने मायके गई और 300 रुपए उधार लिए। अपने बच्चों को लेकर शहर आ गई। यहाँ पहले अपने जेठ के और बाद में बहन के घर रहने लगी। वहीं रहकर मैंने अपने पति और बेटे का पता लगाया। हमने एक कमरा किराए पर लिया और मिलकर नौकरी की। बड़े बेटे को फौज में भर्ती होने के लिए भेज दिया और उससे छोटे को गाँव में छोड़ दिया। बाकी दोनों छोटे बच्चों को आगे पढ़ाया। धीरे धीरे घर की हालत सुधरी। आज हम सब साथ में हैं और बहुत खुश हैं। आज भी याद आता है कि किस तरह मैंने अपने बच्चों को कई दिनों तक भूखा देखा था। आपका कार्यक्रम जब चले शहर की ओर में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। मैं दुआ करूंगी कि आपका ये कार्यक्रम सभी प्रवासियों के मन में अच्छी भावनाएं पैदा करे और सबको ये प्रोग्राम पसंद आए। धन्यवाद श्यामा देवी जी, और हमारी भी यही दुआ है कि हमारा ये कार्यक्रम सबको पसंद आए, साथ ही हम आपकी हिम्मत की भी दाद देते हैं।
तो श्यामा देवी जी, आपकी इस चिट्ठी के लिए आपको मिलता है एक खूबसूरत सा ट्रैवल बैग। और दोस्तों, श्यामा देवी जी की तरह आप भी जीत सकते हैं ऐसा ही आकर्षक इनाम। लेकिन इसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों को चिट्ठी के जरिए हमें भेजते रहिए। आप हमें अपनी चिट्ठियां इस पते पर भेज सकते हैं, कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003। इसके अलावा आप हमें अपने अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है shaharkior@gmail.com।
और अब बारी आती है आज के संदेशों को सुनने की।
तो भाई अंजलि, आज किस किस ने किस किस को और क्या क्या संदेश भेजे हैं?
ये तो नरेंद्र संदेश सुनने के बाद ही पता चलेगा।
मेरा नाम राशिद अली है जी। मैं अपने एक फ्रेंड को मैसेज देना चाहता हूँ, अर्जुन को। वो मेरठ में रहता है, वहीं जॉब करता है इंश्योरेंस सेक्टर में। तो मैं उससे कहना चाहता हूँ कि वो अच्छी तरीके से अपनी जॉब को करता रहे और ख्याल रखे अपने घर वालों का।
मैं रोशन सिंह नेगी नावले दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं अपने माता जी का गुरुद्वार में रहते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ मैं ठीक ठाक हूँ और दिवाली में घर आ रहा हूँ, और घर की जो भी परेशानी होगी मेरे को बता देना, मैं यहाँ से सामान वामान लेके दिवाली में आ जाऊंगा।
मेरा नाम माजिद अली है और मैं जिला बिजनौर से बोल रहा हूँ, तहसील मंजीबाद है। और मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अबिदुल्ला है, वो दिल्ली में रहता है। उससे मेरा बहुत दिनों संपर्क टूटा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे से बात करे या मतलब मेरे घर आवे, मेरे बहुत खुशी होगी।
मैं मोहम्मद सुहेल अहमद दार्जिलिंग से बोल रहा हूँ। मैं अपने प्रियजनों को कुछ सर्विस देना चाहूंगा जो दिल्ली में रहे हैं। उनसे सबसे पहले मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। उनका नाम है साबिर आलम, नूर आलम, शाह आलम, और उनको मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन कहना चाहूंगा। और वो सही से रहे, मतलब घर में ठीक है। और मैं अपने दोस्तों का नाम लेना चाहूंगा, मोहम्मद आफ्ताब, शमशाद और नूर आलम।
मैं सीता थपलाल बोल रही हूँ, चंबा से बोल रही हूँ। मेरी बहन रहती है बिनौनगर में, उसने अभी अभी नई दुकान खोली है, उसका नाम जैसी थपलाल, बेस्ट बिनौनगर, गली नंबर 12। मैं उसे संदेश देना चाहती हूँ कि वो उसने नई दुकान खोली है, बधाई हो और मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है।
मेनो ससी नेगीछा में मंजूर गाँव किरण वाल छो। मैं अपनी बहन स्वाति रावत ते एक संदेश भेजना चाहूँ छो। जूली सी के स्मरण दी मैं स्वाति ते यू बोल चाहती हूँ कि स्वाति तेरी पढ़ाई कन चलनी छा, क्योंकि तू बहुत दिन हैगी तेरे मैं ते फोन भी नहीं करी, और यख ना सब ठीक छा, ठीक छन ते मम्मी पापा कन छन। और स्वाति एक बहुत ही जरूरी बात छा कि तू ना दीपावली में जी अपने मम्मी पापा का साथ एक जरूर है।
अगर आप भी अपना कोई संदेश अपने किसी जानने वाले को भेजना चाहते हैं तो हमें 9197176782 पर SMS कर दीजिए।
दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इससे पहले एक जरूरी बात। हमारे प्रवासी दोस्त मिलजुल कर अपना एक क्लब तैयार कीजिए और उस क्लब से जुड़ी गतिविधियों को हमें फोन करके या लिख कर बताएं। आपके क्लब की गतिविधियों को हम जब चले शहर की ओर कार्यक्रम में शामिल करेंगे।
इसी के साथ हम अपने सहयोगियों हेवल वाणी चंबा, मंदाकिनी की आवाज भणज और दिल्ली और मुंबई के हमारे सभी सामुदायिक संवाददाताओं का भी धन्यवाद करना चाहेंगे।
और हाँ दोस्तों, हमें अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों के साथ चिट्ठियां जरूर लिखते रहिएगा और ईमेल भी करते रहिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस और पता आप एक बार फिर नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है shaharkior@gmail.com, यानी shaharkior@gmail.com।
और पता है कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
तो दोस्तों, ये था जब चलें शहर की ओर का आज का एपिसोड। अगले हफ्ते नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और अंजलि को दीजिए इजाजत।
नमस्कार।
जब चले शहर की ओर।